चलिए ओम शांति। नमस्कार। आज के समाचार कुछ इस प्रकार से। ओम शांति भवन के रिसेप्शन में एक ग्रुप चलता है जिसका नाम है सेल्फ प्रोग्रेस ग्रुप, और इस ग्रुप का यदि हम हिंदी निकालें तो स्वोन्नति। तो इस ग्रुप का मेन मोटो जो है वो है सभी की स्वोन्नति करना। ये ग्रुप नहीं जानता कि इसने किस तरीके से हम सब लोगों की उंगली पकड़कर हमें चला रहा है। हम शायद स्वोन्नति नहीं कर पाते, पर यह ग्रुप बहुत अच्छे से करा रहा है। तो यदि देखा जाए तो ये ग्रुप जो है वो अपनी चरम सीमा पर है, या शीर्ष पर पहुंचने वाला है, या पहुंच जाएगा। ये ग्रुप जो है वो अलग अलग मुद्दों पर काम करता है, अलग प्रोजेक्ट पर काम करता है, जैसे कि अव्यक्त वाणी है, साकार वाणी है। अभी एक इनका प्रोजेक्ट चल रहा था 7 मिनट 7 पॉइंट। आज चूंकि संडे है तो ब्रह्मा कुमारी वंदना को एक टॉपिक दिया गया है जो है रंगीली माया। तो चलिए हम उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने उस टॉपिक पर क्या चिंतन मनन किया है, क्या समझाया है या क्या खुद समझा है, तो उन्हीं से हम बात करेंगे। तो आज जो हमें टॉपिक दिया गया है वो है रंगीली माया। तो हम सबसे पहले देखेंगे रंगीला शब्द क्या होता है। रंगीला अर्थात जो रंगों से भरा है, मतलब जिसके अंदर पूरे रंग है, भरपूर है। और ऐसा कौन हो सकता है? बाबा। तो बाबा जो है वो सारे रंगों से भरा है, और यदि हम बाबा के क्लोज जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, तो बाबा भी हमें जो उसके पास रंग है उन रंगों से क्या कर देता है? भरपूर कर देता है, सुसज्जित कर देता है। बाबा कहता है ना, बच्चे मैं तुम्हें आया हूं श्रृंगारित करने, तो वो उन रंगों से हमें श्रृंगारित कर देता है। इसके अपोजिट हम बात कर रहे हैं किसकी? रंगीली माया की। तो माया भी जो है वो अनेक रंगों से रंगी हुई है। माया के पास भी कोई रंग ऐसा नहीं है जो कोई रंग ना हो। उसके बाबा के जो रंग है ना वो बहुत शीतल शांत रंग है। और यदि हम बात करें माया की, तो माया के जो रंग है वो बहुत चटक है, भड़कीले हैं, अपनी तरफ आकर्षित करने वाले, खींचने वाले। बाबा की तरफ यदि हम जाते हैं तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन माया की तरफ स्वतः ही हम आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसी है रंगीली माया। माया में भी तो माँ है जो हमसे माँ की तरह लिपटी हुई है। फेविकॉल का मजबूत जोड़, कौन सी सीमेंट है? बिरला व्हाइट सीमेंट। तो ऐसी सीमेंट को जोड़ने के लिए बाबा को इस धराधाम पे आना पड़ा है। तो अब हम देखेंगे कि जो रंगीली माया है उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। उसमें पहला पॉइंट निकाला है कि मैं मेरे लिए ही माया हूं। कैसे? या इसी को हमने दूसरा नाम दिया है, देह के रंगों से आकर्षित माया। हमारे अंदर बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं कि बच्चे जब आप मैं शब्द यूज करते हो तो आप समझो कि आप कौन हो? आत्मा हो। जब आप मेरा शब्द यूज करते हो तो आप क्या देखो? बाबा को देखो। तो जहां तक हम ये बात कर रहे हैं मैं आत्मा हूं या आत्मिक स्थिति में हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पर हमने खुद को देह देखना चालू किया तो प्रॉब्लम वहीं से चालू होती है। मैं यदि देह हूं तो देह के खुद के कितने सारे रंग होते हैं? संवेदनाएं, भावनाएं, इच्छाएं, आकर्षण विकर्षण, सारे देह सारे रंगों से भरी हुई है। तो आत्मा के खुद के ओरिजिनल कैरेक्टर है, ओरिजिनल रंग है, लेकिन चूंकि उसको 84 जन्म का अभ्यास है इस देह में रहने का, तो वो क्या होती है? इस देह के रंगों से रंग जाती है। आत्मा खुद के रंग, आत्मा के खुद के रंग जो है वो मर्ज हो गए हैं, और जो देह के रंग है वो उसके ऊपर हावी हो गए, पर्दों से वो ढक गई है। तो देह के रंगों से जब वो जुड़ी हुई है तो उसको निकालने में बहुत टाइम लग रहा है, इतना सारा समय लग रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि देह के रंगों से आकर्षित है माया। हमारा सेकंड पॉइंट है लौकिक और अलौकिक झूले में झुलाती माया। कैसे झुलाती है लौकिक? यदि हम लौकिक में हैं तो ये अलौकिकता हमें अपनी तरफ आकर्षित करती। यदि हम अलौकिक में हैं तो लौकिकता हमें अपनी तरफ आकर्षित करती। हम उधर हैं तो इधर के विचार चलते हैं, इधर हैं तो उधर के विचार चलते हैं। हम दोनों तरफ हैं, सेंटर पे भी जाते हैं और स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाते तो उधर भी जाते, तो हम दोनों तरफ देखते हैं। उधर के लोग इधर की बात करते, इधर की उधर। तो जीवन एक जो है वो मझधार में नैया की तरह डोल रहा है, हाँ बीच में ही अटका हुआ है, पार ही नहीं लग पा रहा है। तो माया यहीं पर दाव खेलती है कि इनका जीवन कहाँ है, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, तो हम उसमें उलझे रहते हैं। तो हमें इससे निकलना है। तो हमारा सेकंड पॉइंट था लौकिक और अलौकिकता के झूले में झुलाती माया। एंड थर्ड पॉइंट है अपनत्व के रंगों से सजी माया। कैसे? जब हमें जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं, कुछ समझ नहीं आता है, तो उस वक्त जो हमारा सहारा बनता है, जो हमें साथ देता है, वो हमारे सबसे ज्यादा निकट या क्लोज आ जाता है। जैसे भाई ने उस दिन क्लास में कहा था कि वो तीन लोग जो हमारे सबसे नजदीक हैं, वो वही लोग होते हैं जिन्होंने हमें उस वक्त साथ दिया होता है जब हमें कोई दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे समय पर उन व्यक्तियों से हमें ज्यादा लगाव, झुकाव या उनकी तरफ ज्यादा निकटता हो जाती है। या हम नेचर की बात करें, प्रकृति से भी हमें अपनी तरफ क्या हो जाता है लगाव, कि वो वातावरण है, वो स्थिति है, तभी हम योग लगा सकते हैं या तभी हम बैठ सकते हैं। जैसा है ना, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, कि जवाब सब समझते हैं जज्बात की। मैं चुप था, मैं कुछ बोला नहीं, तो वो हवा एकदम से जो चल रही थी ना वो रुक गई, क्योंकि वो समझती है कि मैं चुप हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे निसर्ग जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कि प्रकृति जो है ना वो बाबा मिलन का एक साधन है, हमारा मित्र है जो प्रभु मिलन में हमारी पूरी तरह से सहायता करता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम उससे भी लगाव में आ जाते हैं। तो ऐसे जब हम किसी के लगाव या प्रभाव में आते हैं तो माया वहीं पर एंट्री करती है। उन लोगों से इतना मोह है कि हम उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं, और उनको छोड़ने में हमें ज्यादा मेहनत लगती है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, अपनत्व के रंगों से सजी माया। नेक्स्ट पॉइंट है बेहद में हद। बेहद में हद का प्रकोप, हमें दिख रहा है कि सब बेहद है, यहां पर भी सब जगह बाबा हमें बेहद का वैरागी बना रहा है, और हम क्या बन रहे हैं, हद के रागी। बाबा पूरी कोशिश कर रहा है कि बच्चे जल्दी से जल्दी आप बेहद के वैरागी बनो, पर हम नहीं बन रहे, हम हद में ही हैं। मेरा सेंटर, मेरे भाई बहन, उसका सेंटर, उसके भाई बहन, हमने तो यहां तक देखा है कि यदि उसके सेंटर के भाई बहन है तो ओम शांति भी नहीं करना है, क्योंकि वो उनके हैं। यदि उनसे ओम शांति बोल दिया तो नहीं बोलना है उनसे ओम शांति, क्योंकि वो बहन जी आपने वो वाले सेंटर वाली दीदी से बात क्यों की। तो इतना हद हो गया, वो सबसे ज्यादा हद के बंधन तो हमने हमारे लिए ही बांध रखे, उस तरफ तो जाना ही नहीं है, वो उनका है, उस तरफ तो जाना नहीं क्योंकि वो उनका है। तो ऐसे हमने अपने लिए हद, तो कि बाबा तो बेहद बेहद जहां कोई हदे नहीं है, तो ये मैं और मेरा कहां से आ गया है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे आपको इस सब चीजों से क्या होना है, बिल्कुल अलग होना है, तब आप बेहद के वैरागी बन सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है किसी के प्रभाव में प्रकाशित होती माया। ये हमने हमारे लिए निकाला है कि हम किसी के कितने प्रभाव में हैं कि हमसे माया प्रकाशित हो रही है। जितना जितना हम किसी के प्रभाव में आते हैं, नाम रूप में फंसते हैं, उतनी ही माया प्रकाशित होती है, मतलब माया स्ट्रांग होती जाती है। बाबा डिटैच, माया स्ट्रांग। स्ट्रांग होती जाती है कब, जब हम किसी के प्रभाव में आ रहे हैं, तो वो प्रकाशित हो रही है, अर्थात उसके कलर जो है वो बहुत डार्क हो रहे हैं, बहुत ब्राइटनेस वाले होते जा रहे हैं, वो बढ़ती जा रही है, और इधर बाबा हमसे डिटैच होता जा रहा है। तो क्यों हम किसी से प्रभावित होते हैं, तो उसका रीजन है या तो हमें सब में वो अलग नजर आ रहा है, उसमें जो गुण है, विशेषताएं हैं, या जो बाबा दिख रहा है वो उसमें सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो हम ऐसे व्यक्ति से प्रभावित होने लगते हैं। लेकिन वो प्रभावित होना हमारे लिए क्या होने लगता है, नुकसानदायक होने लगता है। तो उसके लिए बचने के लिए हमें हम खुद पर ही काम करना है कि हमें किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं होना, प्रकाशित होना है पर प्रभावित नहीं होना है। इसके लिए हम देखें, जैसे भाई ने उस दिन क्लास कराया था नाम रूप की बीमारी, तो हम यहां से नक्की घूमने गए, तो हमने अपना चिंतन चालू कर दिया कि भाई हम अब लिस्ट तो निकालें कि हम कितने, मतलब कितने के नाम रूप में फंसे हुए। ये लंबी लिस्ट निकल गई, इतने सारे लोग सबके नाम रूप, क्योंकि अच्छा लगना भी तो प्रभाव में आना है या नहीं। आप मुझे अच्छे लगते हो, क्यों अच्छे लगते हो, क्योंकि आपके अंदर वो कोई कैरेक्टर है जिससे हम प्रभावित है, तो अच्छा लगना भी प्रभावित होना है। तो हमारी ये लंबी लिस्ट, हमारा तो ऊपर का दिमाग ही खराब। फिर मेरा चिंतन था कि यदि हमने ये जीवन अपने बाबा को दिया है, उस शिव साजन को दिया है, तो हम उसकी सजनी हैं, और यदि उस शिव साजन के होते हुए हम किसी और को देख रहे हैं तो सुनिए तो आगे तो हम उस शिव साजन की सजनी हैं, और यदि हम किसी और को देख रहे हैं तो फिर हम उससे क्या कर रहे हैं। यदि लौकिक में एक के होते हुए दूसरों को देखते तो हम कहते हैं भाई ये तो लूज कैरेक्टर है, और एक शब्द यूज करते बेवफा है, तो हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि भाई ऐसा तो नहीं है। तो अभी हम कल परसों शीलू बहन जी की मुरली सुन रहे थे, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, तो हमारा दिल थोड़ा साफ हो गया। उन्होंने कहा कि दादी जानकी से एक भाई आए और उन्होंने पूछा कि दादी जानकी बाबा कहता है कि नाम रूप में नहीं फंसना है, पर हम तो आपके नाम रूप में पूरी तरह फंस चुके हैं। तो दादी जानकी ने कहा कि वो अच्छा है, अब उससे और अच्छा जाना है, कम से कम नीचे वालों में तो नहीं फंसे हो, फंसे भी हो तो कम से कम अच्छी आत्मा में तो फंसे हो, नीचे लेवल पर तो नहीं फंसे हो ना। तो ये हमारा पॉइंट था हद में, सॉरी बेहद में हद का प्रकोप, नहीं किसी के नाम रूप में फंसना। नेक्स्ट है हमारा सांसारिक रंगों का इंद्रधनुष। जब से हम ज्ञान में आए ना, तो हमने कभी संसार का ऐसे चिंतन नहीं किया। अभी ये पॉइंट के लिए थोड़ा सोचा कि संसार जो है वो कितने रंगों से, अभी तो ऐसे हमने उसके 7 रंग निकाले, 7 रंग। तो उसमें सबसे पहला रंग हमने निकाला फैशन। सबसे ज्यादा यदि संसार में अभी कुछ व्याप्त है तो वो है फैशन। बाल से लेकर यदि पैर के नख तक यदि किसी व्यक्ति को देखो, तो बाहर देखो आप, इतना ज्यादा फैशन में मेकअप में है कि वो मेकअप के बाद यदि उस व्यक्ति को देखो तो आप सोच में पड़ जाओगे कि ये वही व्यक्ति था जो पहले दिख रहा था, इतना आर्टिफिशियल हो गया है आज। तो फर्स्ट था हमारा जो रंग है वो है फैशन। सेकंड है हमारा पद। यदि संसार में कहीं दौड़ भाग मची हुई है तो वो है पद की दौड़ भाग। फिर अगला है फेम, प्रसिद्धि, हर व्यक्ति को प्रसिद्धि चाहिए। अगला है धन, पैसा, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा पैसे को खींचता है, तो सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। अगला है लिव इन रिलेशनशिप, आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है बाहर। अगला है जो भाई हमेशा सुनाता है, डिजिटल माया। हम चूंकि हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते, तो हमने अभी छोटे बच्चों को ही देखा है। अभी एक 7th स्टैंडर्ड का बच्चा, हमारे पास शिकायत आया था अभी उसका, कि वो टीचर यहाँ सामने पढ़ा रहा है और पीछे बैठा हुआ है, और पीछे बैठ के मोबाइल चला रहा है, इंटरनेट चला रहा है। इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं वो आप समझ भी नहीं सकते। छोटे बच्चे हैं, 6th-7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, इतना मोबाइल, इतना एक बस हम मोबाइल की बात बता रहे हैं, बाकी तो चारों तरफ यही है। अगला है काम विकार। यदि सारे सातों रंगों, हमने 7 रंग निकाले, सातों रंगों में से यदि हम संसार की बात करें तो सबसे ज्यादा 2 रंग व्याप्त हैं। एक है पैसा, पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है, और एक है काम विकार के पीछे। अभी चूंकि हमारे 12th स्टैंडर्ड का ही अभी थोड़े दिन पहले का ही है, इसलिए मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कि एक स्टूडेंट है, वो 10th और 11th में उसने टॉपर पोजिशन गेन किया, 12th में पता नहीं एकदम विचित्र सा रहने लगा, तो हमें डाउट हुआ कि ऐसा क्यों रह रहा है। तो हमने उसके पास गए, उससे बात की, पर उसने हमें कुछ बताया नहीं। तो हमारे एक सर है, हमने उनसे कहा कि सर आप थोड़ा इसको अलग ले जाइए, उससे बात कीजिए, ऐसा फेल हो जाएगा इस तरीके से रहेगा। तो सर उसको बाहर ले गए, उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। सर ने नेक्स्ट डे आके जो सिचुएशन हमें बताई, उसके बाद आप नहीं कर सकते जो उस बंदे के हालात थे उसके ऊपर, ना हमने ऐसी सिचुएशन कभी सुनी ना देखी। सर ने हमें बताया कि वो बच्चा गांव का है, अच्छे रेपुटेड फैमिली से है, वो अपने चाचा चाची के पास रहता है। यहाँ पर उसकी चाची, आप ये समझिए, मेरे तो अभी हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं कि उसको कितना प्रताड़ित किया होगा उस बच्चे को, कि वो सुसाइड करने की सोच रहा था। यदि हम 2 दिन और उसको नहीं देखते तो 3rd डे वो सुसाइड कर लेता। तो आप समझिए कि विकार कितनी चरम पे है कि छोटे बच्चे। तो ये तो एक केस है, इतने कितने हम हमारे सामने आते हैं, चूंकि हम हमारे डिपार्टमेंट के HOD हैं, तो हमारे पास बहुत आते रहते हैं ऐसे। तो ये थी संसार की माया। हम जब से ज्ञान में आए तब से हम चिंतन भी नहीं करते उस तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सत्य में असत्य की मिलावट। बाबा मुरली में क्या कह रहा है, हमने मुरली क्या सुनी, हमने 2nd को क्या सुनाई, 3rd ने उसको क्या समझा, क्योंकि हम ये बाहर देख रहे हैं बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। बाबा जिस इंटेंशन से मुरली कह रहे हैं, जो अर्थ कह रहे हैं, वो हम समझ ही नहीं पाते। जैसे बाबा ने कहा बच्चे आपको ममत्व छोड़ना है, मत पढ़ो। बाबा ने कहा बच्चे आपको देह सहित देह के सारे संबंधों को, ये कुछ पॉइंट है जिन पर हम बाहर ये सब देख रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, देह सहित देह के संबंधों को छोड़ना। तो इन पॉइंट्स को लेकर बाहर इतनी ज्यादा बातें होती है कि वहां जाते हैं तो सब छुड़वा देते हैं। एक भाई हमसे भी बीच में मिले थे, बोलने लगे कि दीदी आपकी संस्था वालों ने तो ठेका ले रखा है। मैंने कहा किस चीज का, बोले पति पत्नी को भाई बहन बनाने का और लहसुन प्याज छुड़वाने का। तो हाँ नहीं उन वो ज्यादा उसी में थे कि मैंने कहा एक काम करो भाई, उन्होंने हमको 1 घंटा लेक्चर सुनाया, तो हमने कहा कि आप एक काम करें हमारी दीदी से आके मिल लें और उनसे बोलें कि आप ऐसे ठेका ना लिया करें, दूसरे ठेके ले लें, तो आप उनसे आके मिलें। तो ऐसी बातें होती रहती है, हम किस उद्देश्य से बाबा कह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं। चलिए लास्ट एंड हमारा लास्ट पॉइंट है प्रेम में माया की प्रवेशता। एक्चुअल प्रेम क्या होता है? प्रेम जो है, अभी हम थोड़े दिन पहले देख रहे थे कि प्रेम सत्य के धरातल पर खिला हुआ वो पुष्प है जो हर भावनाओं से परे होकर, अच्छाई बुराई की हर भावनाओं से परे होकर, हर हृदय को छू लेता है, हर हृदय को महका देता है। कहते हैं ना कि शब्द नहीं है मात्र, यह कोरा, यह अनुभूति हृदय की है। यह हृदय से समझने वाला भाव है। यह समस्त भावनाओं को यदि हम निचोड़ निकालें तो वो प्रेम होता है। ऐसे प्रेम में कितनी मिलावट है। यदि आज हम संसार में प्रेम की बात करें तो वो सारी देह स्तर तक होती है। प्रेम जो है वो देह तक सिमट कर रह गया, जबकि प्रेम जो है वो बहुत ऊंची स्थिति है। क्योंकि यदि हम देखें यथार्थ में, तो प्रेम राधा ने किया था, प्रेम मीरा ने किया था। प्रेम के 100 पान पड़छड़ पे हलाहल क्यों पिया था, 100 पान सीढ़ी। प्रेम तो बस साधना है, उस इष्ट की आराधना है। वो प्रेम निश्चल हो सके तो सत्य की उपासना है। उस सत्य के साथ बैठना, उसके साथ कंबाइंड होना प्रेम है। और उस प्रेम में आज सबसे ज्यादा मिलावट हो रही है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने सारे गुणों को निखारें और आगे बने, और हमारे जीवन में जो रंगीली माया है हम उनसे दूर रहें। 2 मिनट एक कविता सुनाओ। चूंकि प्रेम चल रहा है इसलिए, एक व्यक्ति है जो जीवन से बहुत हताश, निराश, परेशान है, उदास है। उसे कोई इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा ऐसा है। वो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी, उसकी माँ वृद्ध है, उसके पांव के पास बैठा है, हाथ अपने हाथों में लिया और माँ से कहता है, माँ मुझे पुनः गर्भस्थ कर दे या दुनिया में जीने का साहस भर दे। 2 शर्तें रख रहा है माँ के पास कि माँ मुझे पुनः गर्भस्थ कर दे या दुनिया में जीने का साहस भर दे। उड़ेल अपनी ममता मुझ पर, स्नेह तृष्णा तू मेरी शांत कर दे। कि अनुभवों ने बनाया पाषाण मुझे, उर्मे तू मेरे प्रेम सलिल भर दे। इतना अनुभव से भर गया हूं कि दुनिया ने मुझे पाषाण बनाया है, तो उर्मे तू मेरे प्रेम सलिल भर दे। सिखा दे मुझे ज्ञानवान कर दे, माँ मुझे पुनः गर्वस्थ कर दे या दुनिया में जीने का साहस भर दे। जानता हूं कि तेरी ममता की बूंदे, तेरी ममता की छाया है घरौंदा मेरा। तो पकड़ अंगुली और इस कंटक भरे पथ पर फिर से चलना सिखा दे। माना कि तू मूरत है उस असीम की, तू छवि है उस प्रभु की, तुझे देखता हूं तो जीता हूं। माना कि तू मूरत है उस असीम की, तुझे देखता हूं तो जीता हूं। तो बना सीपी, सीपी समझते ना जिसमें मोती रहता है, तो बना सीपी और अपने आंचल के किसी कोने में छिपा दे। माँ मुझे पुनः गर्भस्थ कर दे या दुनिया में जीने का साहस भर दे। ओम शांति।